أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین کرام، پروگرام قیام سے قیام تک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں. ناظرین کرام، آج جس شخصیت کو ہم اس پروگرام میں موضوع بحث بنانے جا رہے ہیں وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد کی شخصیت. اس کی شخصیت سے، تاریخ سے ہم اور آپ کافی حد تک آشنا ہیں، لیکن تاریخ کے کچھ اور دریچوں پر، کچھ اور سوالات پر جو ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ابھی مبہم ہیں، ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمان مولانا رضوان علوی صاحب سے جو کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آئیے ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ابن زیاد جانی پہچانی شخصیت، تاریخ کی بڑا کردار رہا تاریخ میں، کون تھا، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابن زیاد کا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا، اور جب یہ مارا گیا ہے جناب امیر مختار کی فوج کے ہاتھوں، تو اس کی عمر 34 یا 37 سال تھی. اصل مسئلہ یہی ہے، دیکھیے ہمارے پاس تاریخ میں کچھ کردار اچھے ہیں، ہم اچھے کرداروں کو بیان کرتے ہیں، لیکن جو برے کردار ہیں وہ اس کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں. اگر ہم ان برے کرداروں کو، جو منفی کردار ہیں، ایک اچھی طریقے سے ان پر تحقیق کریں اور ان کو غور سے دیکھیں، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ابن زیاد 34 سال یا 37 سال کی عمر میں وہ کام کر بیٹھا جس کا تصور ذرا مشکل ہے.
یعنی ایک جوان آدمی سے،
ایک جوان آدمی سے اس عمر میں، یعنی اس عمر میں یہ کام انجام پانا، یہ خود ایک مسئلہ ہے. تحقیق کی جائے کہ آخر کیا وجہ تھی، کہ اس کے اندر وہ کون سے عناصر موجود تھے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بھیانک کام کر بیٹھا، اور ایسی کون سی صلاحیتیں تھیں اس کے اندر کہ جو یزیدی سسٹم کو چلا رہی تھی. اس کے اندر وہ صلاحیتیں تھیں، کیونکہ دو بڑے صوبے اس کے کنٹرول میں تھے، بصرہ اور کوفہ.
ویسے بھی دیکھیں تو پوری تاریخ میں اس کی شخصیت کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے.
جی، ہمیں خصوصاً کربلا
یزیدی سسٹم میں، سسٹم یا اس کی خلافت میں،
خصوصاً کربلا کے موقع پر. اور امیر مختار اور جناب مسلم کے اس قصے میں ہمیں اس کا جو کہ مسد جو یہ داخل ہوا ہے، ہمیں اس قصے میں جو یہ نظر آتا ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا پہلے سے دیکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ یہ آخر آیا کیوں، آخر یہ اس سسٹم میں اس موقع کے لیے کیوں آیا ہے. دیکھیے حضرت مسلم کو چنا گیا، امام حسین نے چنا، جیسے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں. اس کا چناؤ بھی بہرحال ایک سسٹم کے تحت ہوا ہے، کسی نے اس کو چن کر یہاں بھیجا ہے کہ یہ کوفے میں، آخر کوفے کے حالات کیا تھے، کیونکہ کوفہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں یہ کہہ لیجئے کہ مختلف اقسام، مختلف عقائد، مختلف افکار کے لوگ رہا کرتے تھے. اس میں ایک فکر شیعوں شیعوں والی فکر تھی، امام حسین کے چاہنے والے تھے، امام حسین کے ماننے والے تھے. آیا کیسے حالات تھے، کس طریقے سے اس نے کنٹرول کیا اس کوفے پر، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوفے میں اس سے پہلے نعمان بن بشیر کے، جو جناب امیر مختار کا سسر ہے، بنو امیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، انصاری ہے. چاہتا یہ ہے کہ اہل بیت کے روبرو نہ کھڑا ہو، کیونکہ انصاری ہے، بہرحال تمام تر عظمتوں کو پہچانتا ہے، اور دوسری طرف حکومت بھی کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ اسی وجہ سے جناب مسلم نے امیر مختار کا گھر چھوڑا تھا، کیونکہ طے یہ پایا تھا کہ جو کچھ بھی کام ہوگا وہ رازداری میں رہتے ہوئے ہوگا، और क्योंकि अब जनाब अमीर मुख्तार का घर उनके लिए एक पनाहगाह की हैसियत नहीं
नहीं
रखता,
रखता, हाँ खतरात हैं वहाँ पे।
खतरात हैं वहां पर, लिहाजा हालात कूफे के खराब होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बनू उमैया के चाहने वाले, यजीदी सिस्टम के चाहने वाले, खुसूसन उमर साद वहां मौजूद है, कि जो रोज रोजाना की बातें खत के तौर पर यजीद को भेजता है कि आज ये हो गया, नौमान बिन बशीर ये कर रहा है, मुख्तार ये कर रहे हैं, मुस्लिम की आमद की खबर सुन चुके हैं, तरह तरह की खबरें वहां वो इरसाल कर रहा है। अभी तक इब्न जियाद बसरे में है। फिर इसके बाद जब ये इस तरह के हालात, जो लम्हा लम्हा की खबरें जब यजीद तक पहुंची हैं, तो वहां से इब्न जियाद का तायुन हुआ कि नहीं, इब्न जियाद ही इस काम को कर सकता है और इब्न जियाद ही इस कूफे को संभाल सकता है। यानी इतना अहम तरीन शख्सियत था इब्न जियाद के बारे में हमें जो तारीख में मिलता है। देखिए इब्न जियाद जो है वो किसका परवरदा है, हमें तारीख में लाबलाए कलाम के अंदर एक किरदार मिलता है कि जो अमीर शाम का भी मुशीर है और यजीद का भी मुशीर है, कि जिसका नाम तारीख ने सरजॉन के नाम से याद किया है, तारीख ने उसे सरजॉन के, जो नसरानी है और रोमी है। यजीद और इब्ने जियाद दोनों इसी की दस्त परवरदा हैं, इसी के जेर तहत उन्होंने परवरिश पाई है, इसी के जेर तहत वो जवान हुए हैं। जबकि यजीद और इब्ने जियाद के दरमियान मुखालफत है, आपस में एक झगड़ा चल रहा है, उसके बावजूद सरजॉन के कहने पर, क्योंकि मुशाविर है, यजीद ने इब्ने जियाद को कूफे की अमारत सुपुर्द की कि नहीं, ये काम तुम ही कर सकते हो, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि ये काम फकत और फकत यही कर सकता है, इसमें
इब्ने ज़ियाद कर
कुछ इब्ने
सकता है।
जियाद कर सकता है, इसमें कुछ सलाहियतें मौजूद हैं। बहरहाल हम ये देखते हैं कि इब्ने जियाद को जब अमारत दी गई है तो इब्न जियाद किस तरीके से कूफे दाखिल होता है। चेहरे पर डाटा लगाए, चंद सवारों को लिए हुए कूफे वारिद हो रहा है, और इसका ये आना चंद वजूहात की बिना पर है। यानी जब ये कूफे वारिद हुआ है, मुंह पे डाटा लगाए, ये देखना ये चाहता है कि कूफे के हालात कैसे हैं, कूफा इस वक्त किस सिचुएशन में है, ताकि ये मालूम हो सके कि अब करना क्या है।
अच्छा, यहां तक इसका ये मकसद नहीं है कि कूफे की हुकूमत को अपने हाथ में ले।
कूफे की अमानत तो मिल चुकी है इसको, अब ये जाएगा दारुल अमारा पर जाकर तख्त पर बैठ जाएगा और नौमान बिन बशीर को हटा देगा, लेकिन ये कूफे को कंट्रोल करना चाहता है और कूफे को बहरहाल अपने मुट्ठी में लेना चाहता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस तहरीक को कुचलना चाहता है। और इसके लिए जो सबसे अहम तरीन मसला जो अभी कूफे में वारिद होने के बाद पेश आया या आएगा, वो क्या है, वो जनाब मुस्लिम की तलाश है कि किस तरीके से इसने जनाब मुस्लिम की तलाश की है। बहरहाल ये भी एक जो है कहना चाहिए कि इसकी सलाहियतों में से एक सलाहियत थी, किस तरीके से ये जानता है। असल में मसला सारा ये है क्योंकि ये तरबियत याफ्ता है, ये इस बात को पहचानता है कि चोट कहाँ मारनी है, चोट किस जगह मारनी है, किस तरीके से इस मुकद्दस तहरीक के जो सुतून हैं उनको ढूंढा जाए और उनको पकड़ा जाए। तो इसने वही काम अंजाम दिया कि ये सबसे पहले जैसे ही कूफे वारिद हुआ, जैसे ही जो है दारुल अमारा पे वारिद हुआ है, देखिए दारुल अमारा में जब ये आया है तो अभी तक इसके पास जो है वो फौज नाम की कोई चीज नहीं है, फौज नहीं है, इसको खुद को मिलाकर 35-36 आदमी हैं मौजूद हैं दारुल अमारा में, और पुलिस का जो निज़ाम है कूफे का वो ख़त्म हो चुका है, जो है वो जो उनका जो पुलिस का जो कोतवाल है, यानी जो कोतवाल शहर है, वो बार बार आकर ये शिकायत करता है, आज ये हो रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी कुव्वत ख़त्म हुई, यानी बिल्कुल खोखली खोखली
हाँ, यानी
हुकूमत है वहां पर।
नुमान इब्ने बशीर की गिरफ्त
से निकल ढीली
बिल्कुल
पड़ चुकी है,
कमजोर पड़
निकल
गई।
चुकी है वहां से, और कूफा इनके हाथों से निकलता जा रहा है। इस तरह के अफकार वहां कूफे के अंदर इनके फैलना शुरू हो गए, हुकूमत के खिलाफ, यजीद के खिलाफ। और लोग सुनने को तैयार नहीं है, इस सिस्टम को मानने को तैयार नहीं है। यानी इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में किस तरीके से ये आया और आकर इसने वहां पर कंट्रोल हासिल किया है।
यानी तारीख क्या कहती है, अगर ये नहीं आता तो स्टेट के अंदर एक और स्टेट बनने का खदशा था।
अच्छा था, जाहिर सी बात है, कूफा यजीद के हाथों से निकल जाता, ठीक, किस तरीके से, क्योंकि बसरे में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी। इसने बसरे को भी कंट्रोल किया और उसके साथ साथ कूफे को भी। लोग ये कहते हैं कि इब्ने ज़ियाद अमन पसंद इंसान था, यानी उनके कहने का मकसद ये था, ये है कि क्योंकि ये अमन चाहता है अपने स्टेट में, अपने शहर में, अपने जिस जगह पर ये हुकूमत करता है, लिहाजा हर वो वसीला इख्तियार करता है कि जिससे वहाँ अमन कायम हो सके। हाँ,
चाहे वहां लोगों का खून क्यों ना बहाना पड़े, कत्लो गारत
कत्लो
करनी
गारत
पड़े,
कर
वहां लोगों के घर
किसी भी,
जलाने
हाँ
पड़े, लूट मार करनी पड़े,
जी,
बस उसको अमन
अमन
चाहिए।
चाहिए। जो हम
हाँ
मैं यानी हम इस बात के जो है वो खिलाफ है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो अमन पसंद इंसान नहीं है, सफाक है, कातिल है, चालाक है, और अल्लाह आपका भला करे, तमाम तर बुराइयां इसमें मौजूद हैं। ये अमन पसंद भी नहीं है, इसलिए कि अमन के लिए जो सबसे पहले जिस कहना चाहिए कि जिस बात को मद्देनजर रखा जाता है वो सुलह है, और मसालेहत अंदाज, मसालेहत
लोगों की
पसंद,
ख्वाहिशात का
जी,
एहतराम करना है
एहतराम
उस
करना
जगह
है,
पर जिस शहर में आप
और
वाली हैं।
जो दुश्मन है या जो मुखालिफ लोग हैं उनसे बातचीत का मरहला सबसे पहले पेश आता है। जबकि इसने आते ही बातचीत वगैरह पर कोई इक्तफा नहीं किया, बल्कि आते ही धौंस, धमकी और डराना धमकाना शुरू कर दिया वहां के लोगों को। आते ही पहले काम क्या किया इसने, सबसे पहले जिस जो काम इसने अंजाम दिया कि वहां देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ भी आजकल के दौर में भी कौमी असेंबली के रुकन वगैरह होते हैं, ये असल में हुकूमत और आवाम के दरमियान राबित होते हैं। उस जमाने में भी इस तरह का सिलसिला पाया जाता था कि एक कुछ राबित होते थे कि जो कौम और कबीले को हुकूमत से मिलाते थे, उन राबितों को उसने जमा करना शुरू किया और उनको बुलाया कि भाई, और उनको बुलाकर बिठाया। बिठाने के बाद पहले तो उनको डांटा, उनको खूब डांट पिलाई कि देखो, तुमने हुकूमत के खिलाफ बगावत की, ना सिर्फ हुकूमत के खिलाफ बगावत की बल्कि इस्लाम के खिलाफ बगावत की है, उनको गुनहगार ठहराया,
हाँ, खलीफा
खलीफा
मुसलमानों के खलीफे के
मुस्लिमीन, जी
खिलाफ,
जी मुसलमानों के खलीफा
खलीफा के
के
खिलाफ।
खिलाफ जो है तुमने बगावत की है, बैत को तोड़ा है। बैत जैसा अहम तरीन मसला उस जमाने का कि अगर कोई बैत कर ले तो समझिए कि उसने अपने आप को उसके हाथों बेच दिया है, अब जो वो करता फिरे। तो ये उनको, जब उनको बुलाया, फिर उनसे कहा कि अब तुम ये काम करो कि अपने कबीले वालों को रोको कि वो इमाम हुसैन से जाकर ना मिले, शहर में शोरिश ना करें। दूसरी तरफ कुछ जासूस के जो हुकूमती जासूस हुआ करते थे उस जमाने में, उनको भी बुलाया और उनको पैसा, रुपया पैसा दिया और कहा कि देखो, तुमने जाकर आवाम के दरमियान तरह तरह की प्रोपोगंडे, तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के
अफवाहें फैलानी
अफवाहें
है। अब
फैलानी है। ये उसका, यानी देखिए, इब्ने ज़ियाद के पास अभी तक कोई फौजी कुव्वत मौजूद नहीं है, अभी तक
अभी
कोई
सिर्फ वो अपनी सलाहियतों का
सलाहियतों को
इस्तेमाल कर रहा
इस्तेमाल
है,
कर रहा
और
है, और
उन
अपनी,
सलाहियतों की बेस पे वो ये चाहता कि कूफे वाले उसके साथ शामिल हो जाएं
शामिल हो
और
जाए
उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहें।
लबैक।
अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे माजरत के साथ नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की मौजू है बहस शख्सियत है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की। आइए अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। मौलाना, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो इब्ने ज़ियाद ने वहाँ पे अंजाम दिए हैं हम यहाँ तक तो बात कर चुके हैं कि उसने आके सबसे पहले जो उसके जहन में प्लान्स थे, अभी तक उसने किसी सरकारी मशीनरी से
इस्तेफादा नहीं
इस्तफादा
किया।
नहीं किया है और उनको इस्तेमाल नहीं किया है। अभी
जी
सिर्फ और सिर्फ वो अपनी ज़ाती जो उसके पास टैलेंट है,
जी
शैतानी टैलेंट,
शैतानी टैलेंट कह लीजिए, कुछ भी
उसके
कह
बिना
लीजिए।
पर
जी
वो
जी जी
लोगों
वो लोगों
को
को कंट्रोल कर रहा
हाँ
है।
मुनहरिफ कर रहा है इमाम
हाँ,
हुसैन
वो
अलैहिस्सलाम के साथ मिलके क़याम करने से।
फौज तो नहीं है उसके पास। देखिए, सबसे अहम तरीन मसला यह है कि कूफे में इस वक्त फौज नहीं है, दारुल अमारा में इस वक्त वो फौजी कुव्वत मौजूद नहीं है। लेकिन जो चीज़ इब्न ज़ियाद के पास मौजूद है, सोने चांदी के सिक्के हैं, धमकियां हैं, धौंस है, लालच है, लोगों को लालच देना है, लोगों को डराना धमकाना है, और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोपगंडे दुश्मन के खिलाफ, इमाम हुसैन के खिलाफ, जनाब मुस्लिम के खिलाफ, या और दूसरी जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं शियों की, जैसे हानी इब्ने उरवा वगैरह, इनके खिलाफ वो रुपया पैसा पानी की तरह बहा रहा है ताकि तमाम तर मसाइल को अपने हक में ले ले। इब्ने ज़ियाद चाहता यह है, जैसे आपने अभी सवाल में अर्ज किया कि उसने और क्या क्या काम अंजाम दिए, इब्ने ज़ियाद चाहता यह है कि जो मुस्लिम यहाँ आ चुके हैं, अब तक उसे मालूम नहीं चला है कि मुस्लिम हैं कहाँ,
हाँ, बस उसको ये खबर है कि इमाम के सफीर आए हैं यहाँ
इमाम का
पर।
सफीर आए, और इसको ये नहीं मालूम है कि ये हैं कहाँ। अब उसके लिए सबसे बड़ा काम जो ये कर रहा करता है, देखिए बहुत अहम तरीन मसला है ये, आज के ज़माने का भी, उस ज़माने से चलता चला आया। अपने साथ एक गुलाम लाया है, यस मुशीर कह लीजिए, तारीख में कोई किसी ने मुशीर कहा, किसी ने गुलाम कहा, ये अपने साथ एक शख्स को लाया है जो इसका अपना तरबियत याफ्ता है, उसका नाम है माकल। उसको ये अपने साथ लेकर आता है और उसको बाकायदा तरबियत दे के कि तुमने करना क्या है, 3,000 अशरफियां इसके हाथ हवाले करता है, और इसको कूफे की उस जगह पर कि जहां पर उमूमन अहले बैत के चाहने वाले जमा होते हैं, इमाम हुसैन के हिमायती जमा होते हैं, उस तरफ रवाना कर दिया कि जाओ जाकर मालूम करो कि
हाँ, अब
मुस्लिम
तुम्हारा
का
काम है
है,
मुस्लिम को
मुस्लिम को
ढूंढना।
ढूंढना। ये शख्स पहुंचता है कूफे की मस्जिद में, देखता है चारों तरफ लोग नमाज पढ़ रहे हैं वहां, इसको अभी तक ये मालूम नहीं है कि इनमें बर्जस्ता शख्सियत कौन है जो शियों की है, देखता है तो इसने क्या देखा कि एक शख्स है कि जो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ रहा है, जो बहुत ज्यादा इबादत में मसरूफ है, ये समझ गया कि यही अहले बैत का चाहने वाला है, इब्ने ज़ियाद ने यही इसको पढ़ाकर भेजा है। ये पहुंचता है वहां पर, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अलैक सलैक होती है, और अपने आप को हमस का रहने वाला बयान करता है क्योंकि कूफे में इसको कोई पहचानता नहीं, और कहता है कि मैं इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहता हूं और अपने पास से ये 3,000 दिनार या 3,000 दिरहम के जो इब्ने ज़ियाद ने उसको दिए थे, मैं इस तहरीक के नाम पर खर्च करना चाहता हूं। जाहिर सी बात है, इस तहरीक को तलवारों की जरूरत है, घोड़ों की जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, लोगों को के अखराजात हैं, ये 3,000 दिरहम मेरी तरफ से हदिया है, ये आप ये काम रख लीजिए। वो शख्स कि जिसके पास ये बैठा हुआ है, वो कोई मामूली शख्स नहीं है, वो शख्स है कि जो हर चीज को पहचान, मोमिन इंसान है, जीरक इंसान है, हुबदार अहले बैत है, उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत है, वो जानता है हर चीज को, लेकिन उसको भी ये धोखा देने में कामयाब हो जाता है। और वो कौन है शख्सियत? मुस्लिम इब्ने औसजा।
औसा की शख्सियत
मामूली शख्सियत नहीं है। हम देखते हैं कि कर्बला में ये अपने आप को इमाम की खिदमत में पहुंचाते हैं और इमाम की रकाब में शहीद हो गए, लेकिन ये शख्स इतना चालाक है, इतना अपने काम में माहिर है कि मुस्लिम इब्ने औसजा जैसी शख्सियत को धोखा देने में कामयाब हो जाता है। मुस्लिम इब्ने औसजा बहरहाल इसको टाल मटोल करते हैं कि हाँ ठीक है, ये है वो है, पैसे वगैरह नहीं लेते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मसला नहीं है, ताकि इसको आजमाया जा सके, और लेकिन ये इतना पक्का कि उनको भी धोखा देने में तैयार हो गया। 3 से 4 दिन के अंदर ये मुस्लिम तक पहुंच गया, 3 से 4 दिन के अंदर मुस्लिम तक ये अब पहुंच जाता है, और इब्ने ज़ियाद को जाकर ये बयान करता है कि भाई मुस्लिम जो है इस वक्त हानी इब्ने उरवा के घर में पोशीदा है, बात खुल गई, इब्ने ज़ियाद कूफे में आकर जो पहला काम करना चाहता था वो यही था कि इस तहरीक के फर्द अव्वल को, कि जो इस वक्त कूफे में मौजूद हैं, उसको पकड़ा जाए और उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। लेकिन इब्न ज़ियाद ये बात भूल बैठा था कि जो मुकद्दस तहरीकें होती हैं वो अफराद की वजह से नहीं कुचली जा सकती। अफराद को पकड़ लेने से, अफराद को मार देने से, ख़त्म कर देने से उन तहरीकों का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि उन तहरीकों पर अल्लाह का हाथ हुआ
हाथ
करता
हुआ
है।
करता है। तो ये हज़रत मुस्लिम इब्ने औसजा जो हैं उनके बारे में आप क्या कहें? यहाँ पे क्या उनकी सियासी बसीरत कमज़ोर थी या शख्सियत शनासी में उनकी शख्सियत कमज़ोर थी? क्या उनवान देंगे यहाँ पे?
उनकी सियासी बसीरत कमज़ोर नहीं थी। मसला ये था कि हालात ऐसे चल रहे थे कि हर दूसरा आदमी अपने आप को हुबदार अहले बैत बना रहा था, जाहिर कर रहा था, ठीक है। और फिर किस तरीके से वो जो उस माकल पर, उस गुलाम पर, उस जासूस के ऊपर एतमाद ना करते, जबकि वो इस बात को, इस बात का इजहार कर रहा था कि मैं शिया हूँ और पैसे भी लेकर आया था, ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर उनकी सियासी बसीरत या वो अफराद को पहचानने में कोताही कर रहे हैं, नहीं, बल्कि इसका भेस ही ऐसा था। ये अपनी जानिब से मुकम्मल तरबियत पाकर ही आया था। एक नुकता तो मकसद हम यहाँ ये कह सकते। दूसरा ये कि जो लोग तरबियत पाकर कहीं से आते हैं और अपने आप को मोमिन और शिया कहलाकर शियों की सफ में दाखिल होकर शियों के दरमियान निफाक पैदा करते हैं, उनका पहचानना आसान नहीं है, उनका पहचानना मुश्किल है, क्योंकि वो आप ही जैसी बातें करते हैं, वो आप ही जैसी गुफ्तगू करते हैं, वो लगता महसूस ऐसा होता है कि इसके मुंह में आप ही की ज़बान है।
लेकिन यहाँ पर मैं, वक्त हमारे पास क्योंकि ख़त्म हो चुका है और इब्ने ज़ियाद का मौजू बहुत तशना है,
जी
हमें इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करने की और जिस तरह आपने कहा तहकीक करने की ज़रूरत है
जी जी
कि इसके मुख्तलिफ जो इसने काम अंजाम दिए हैं अपनी इतनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में,
जी
उनके मुख्तलिफ पहलुओं पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, तहकीक करने की ज़रूरत है कि उसकी ज़िंदगी का एक एक स्टेप, एक एक कदम जो उसने उठाया वो हमारे लिए निशान इबरत है।
जी
नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम आप अपने आज की गुफ्तगू को समेटते हुए, अलबत्ता ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी ये मौजू बहुत तशना है, इसके ऊपर मज़ीद सवालात हमारे आपके जहनों में मौजूद हैं और तरह तरह के शुबहात हैं, तरह तरह के इबहामात हैं जो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद की ज़िंदगी में हमारे लिए पैदा होते हैं और जो कुछ भी उसने जो किरदार अदा किया कयाम करबला में, वाक़िया करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में जो उसका किरदार है, बहरहाल ये सारी चीज़ें हमारे लिए इबरत का बायस हैं। हमें चाहिए कि इसकी ज़िंदगी पे मज़ीद तहलीली गुफ्तगू करें, तहकीकात करें, तहकीकी काम को अंजाम दें। यहाँ पर ये कहना बेजा ना होगा कि अगर कूफा के अफराद में अपने वक्त के इमाम की बसीरत मौजूद होती और वो उस विलायत की सही मार्फत और सही पहचान रखते तो शायद इब्ने ज़ियाद, क्या इब्ने ज़ियाद जैसे 10 अफराद भी अगर आ जाते तो वो उनको धोखा नहीं दे सकते थे। यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।